And from boyhood, became in a very respected Vaishnava family. His father and mother were respected Vaishnavas. In any line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they used to worship Radha Govinda or any deity there in their home. Radha Gopal. They used to step from forefathers also. It is this, that deity is still there. And that is why Govinda Maharaj has told his so many disciples to make a very good temple there so that worship can be done there in a very proper way. And if he was in this world, I think that it would have been done in this year. But unfortunately, he left this planet and went to serve his holy master and Radha Govinda. I know that he was so learned in Gaudiya Vaishnava Siddhanta. And especially, he was so much learned in Bhaktivedanta Sindhu and then deeply entered into the Siddhanta of Chaitanya Charitamrita, especially first, fourth, second, eighth, Rupa Goswami Siksha, Sanatana Siksha, especially Raya-Ramananda dialogue that he has written in his book, or he sent to me. One came after his leaving this planet and one I visited when he was in Kuala Lumpur. I think he was not as all ESKCON leaders are. He wanted to stay and wanted to realize the truth. I know that he was not in the same opinion as ESKCON leaders are. In so many Siddhants, he wrote a book taking all the example from Swami Jivo that you never can fall from Golok Vrindavan. He made a book and he gave so many examples of Swami Jivo, what he has written, and he discovered so many things from Jiva Goswami Sandarbha, also from Chaitanya Chaitanya and from so many books. I did not know that he has done, but after his departure, anyone did read that book, I thought that this book is so good. He did not want to compromise anyone who is against Bhakti Siddhanta. And that is why all the leaders wanted to suppress him. That he has to give up all that ideas and what he are telling he should adopt. But he never, never, he has never compromised. Like Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, like our Guruji, like Swamiji, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, they never compromise with any against Siddhanta. That is also my thing. If the whole world is in one party, I am alone, even I cannot compromise with them. He was also in that state. So I think that he was a proper disciple of Swami. In our disciplic line, I think that now the ESKCON leaders are not in the disciplic line. They are not thinking to adopt all the principles of our disciplinary clients. They are not recognized for Rupa Goswami, Jiva Goswami, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. They are also doing under Sridhar Maharaj also. They think at first that I am their friend, and actually I am still friend. But now they are opposite to me. Because I am in your Guru Parampara line, giving all this Siddhanta. So he never compromised with them, and that is why they began against of Srila Gaura Goswami Maharaj. They also they made so many things that you cannot go to Holland, you cannot go to Eastern countries, you cannot preach here and there. They wanted to prison him in a room in Kuala. But he was a lion, so he jumped up out of his cave and he went here and there and preached all this boldly. I wanted. Once he went, 2 or 3 years, I don't remember, he went when I was in Puri. He went to 92. In 92, he went to Puri to see me, to meet me. And then he discussed so many things, especially on the matter that there is so much difference between Vaidhyakti and Raganu. Our disciplic line from Rupa Goswami to the Jiva Goswami, also before them, Sarvadamoda Radhamananda, and after that, after Saptino Thakur Srila Prabhupada, our Guru, they are not come to this world only to preach Vaidhyakti. They have come to preach Sar and Satsang Sam, Srimad Bhagavatam, also Raganuga Bhakti. Without Raganuga Bhakti, we cannot understand Srimad Bhagavatam, Chaitanya Chaitanya, too. So he has written in his book all these things. I know that anyone can be known and he can be realized by his books. We know that from Srimad Bhagavatam, who was there. So they have not written that how they are to his birth, where, what he knows. But yes, everything, who was he, we can know by Srimad Bhagavatam. That's the reaction can be known by his Chaitanya Chaitanya. How he was a Rasik and House and Sattva and Siddhanta. We can also know Rupa Goswami by his books, so many books, especially by Bhaktirasami Sindhu, which was in Mani, and other books. Then who was he? He was a Manjari Ashwani, and he has come with his behind Krishna Kapoor to preach all these things. Manopashuri Chaitanya Manopisham Sadhita Vijayina Bhushale Swayam Rupa Sadamayam Dada. Yes, when we come to this, not only Vaidhyakti, Bhakti has been preached, Vaidhyakti has been preached by Ramanuja, Madhvacharya, Limbakacharya, by all previous acharyas. Yes, not only, some Chaitanya Mahaprabhu, from all these things, it can be preached by Sadashi, that is Advaitacharya. No use of coming up Chaitanya Mahaprabhu for all these things. So, he only came for Anarchitacharini Kiras Karunaya Vatirna Karo and Radhaya Pranaya Mahima. He came to test the three desire more of Srimati Radhika. And to preach and to give Unnata Ujjala Arasan Sotapriyam, the glory of the beauty of Unnata Ujjala Arasan. What is that beauty? Lord Govinda Maharaj has written. That beauty is the services of Manjari, like Rupa Goswami. So a person having the mood, inner and outer of Rupa Goswami in Rupanuga. But those who are not parties actually, the mood, inner and outer, most of Rupa Goswami, they may be Radhanuga, but not Rupanuga. I know that he was Radha Rupanuga. He wanted to fully accept the inner words of Srila Rupa Goswami. They can know all these things by his writing and also by his preaching. So, he was truly my friend. He has too much honor for me, I know from this disciple. Once he met in Vrindavan. First he met in Vrindavan. When Swamiji Maharaj, Bhaktivedanta Swami was living this planet and he was going to touch this divine couple, Radha Govinda and Golok Vrindavan. But all the seniors, Sannyasi and Jetiji were around me, so he could not talk more with me. He could not tell me. But I know that he had told to me so many disciples that Sadhu Singh is prominent thing. Without Sadhu Singh, we cannot improve. But we Sadhu, who is actually following Rupa Goswami, our disciplic line, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Prabhupada, they are. Swamiji has written in his Chaitanya Charitamrita explanation and Srimad Bhagavatam so many things. But he covered all these things for the sake of not qualified, so much qualified people. But he wanted that after some years they will be qualified and they will look after. And then they will be qualified for. So he covered all these things and he put that response group meditation. Clearly manifested. Anyhow, he was a very bona fide Vaishnava. He followed Radhanuga Bhakti, Rupanuga Bhakti, Vaishnava Bhakti. And that is why I think that the disciples, pure disciples of Guru Govinda Maharaj, they are chanting if they were after his divine, after his went to Vrindavan, quite warm and spent themselves, and had the same mood, same thinking, as they were taking from, learning from Guru. But they think that here and there the four are missing. It is very hard to have. So when Guru Govinda Maharaj left this world after 2 or 3 days, for 10 days, all the seniors, the disciples of Guru Govinda Maharaj, went to see me, meet me at Navadvipa. And they clearly told me all these things. Then I went to Birmingham in England, things involved. There are many that is why I think their heart is not blinking there, so they are coming here, there. I told them that I will help you. I don't want to make any decision, but yes, I want to help. I have helped foreigners. Today is now 9 April.
साधारण भक्तों से वो श्रेष्ठ है। इस चीज को समझ करके उनको भी वैष्णव संत में रखो, इसे उनके प्रति भी किसी प्रकार की अवज्ञा, किसी प्रकार का तुच्छ ताच्छल्य बोध न हो। कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में ये स्थिति उनकी आई है और हम भी उसी स्थिति में आए हैं। इस चीज को समझो, जो इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो साधन भजन है, एक वैष्णवों की निंदा से, अवज्ञा से वो सब समाप्त उखाड़ करके फेंक, इसलिए उसका भयंकर फल भी है। अब विशेष करके तीर्थों में वे भी ब्रज में वो वज्रलेप के समान वो हो जाता है। खूब सावधानी से विचार करके ये सब चलना चाहिए। तो हम बतला रहे थे प्रौढ़ मध्य मंद प्रेम गोपियों का, कहां वो प्रेम और कहां हम लोग, उसका सुनने का अधिकारी कौन है, यही समझो। तो इसलिए शांत चित्त होकर के हम लोग इन चीजों को श्रवण करेंगे, अनुधावन करने की चेष्टा करेंगे, जहां की माया के प्रति कहीं भी लोभ नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, अर्थ स्त्री संग प्रतिष्ठा किसी प्रकार की भी कोई वासना हृदय में नहीं रहेगी। एकांतिक रूप में इन्हीं सब का चिंतन लीप और ये श्रवण कीर्तन होगा, सबसे ये चीजें आएंगी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम लाख चेष्टा करो, पढ़ करके नहीं होगा, साधन भजन करो, साक्षात में साधु संघ में हरि कथा सुनो और तुम्हारा चित्त जितना ही माया से ऊपर चलता जाएगा उतना ही चीजों को अनुभव कर सकोगे। केवल पढ़ने से लाख दिन रात पढ़ते रह जा रच पच जाओ तो नहीं होगा, यह होगा वैष्णव की कृपा से कुछ साधन सापेक्ष। जितना ही माया का मल दूर होता जाएगा, चित्त बल प्रकाशित होता जाएगा, हम उनको अनुधावन या अनुभूति कर सके। अन्यथा लाख जैसा करो नहीं होगा। माया साधारण एक चीज हम जानते हैं कि क्रोध या माया की आसक्ति यही नहीं जा रही है, और ये चीजें कहां से आएंगी। ये परम दुर्लभ हम लोगों का सांप्रदायिक संपत्ति है। चैतन्य महाप्रभु इन भी चीजों को ले आए, सनातन गोस्वामी उस चीज को वितरण कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे नहीं समझ सकते। जब तक ये वृत्तियां रहेंगी कैसे समझेंगे हम। दो वृत्तियां एक साथ, दो तलवार एक मैन में नहीं रहती है तो ये दो वृत्तियां कैसी रहेंगी। अभी तो हम लोग ये ही नहीं समझ पाते हैं, क्रोध मन की वृत्ति है ये ठीक है ना। क्रोध किसकी वृत्ति है, मन की वृत्ति माने माइक वृत्ति है माया की। अच्छा, एक आदमी अभी नाना प्रकार के अनर्थों से भरपूर है किंतु हरि नाम करता है, मैं हरि नाम करूंगा। अच्छा, ये वृत्ति किसकी है, माया की है ना किसकी, किसकी है,
आत्मा की।
ऐसा मत सोचे, अभी मन से सोचा ये संसारिक वृत्तियों के प्रति ये क्रोध आया हमको, किसी स्त्री के प्रति, किसी के प्रति हमारा कुछ, हमारी कुछ आसक्ति हुई, उनके प्रति कुछ जैसा भी जड़ीय काम एक पैदा हुआ, ये मन की वृत्ति। और उसी वृत्ति से हम सोच रहे हैं कि हमने थी ये सोचा कि हमारा मंगल कैसा होगा, ये भगवान का नाम करने से होगा, तब हरि नाम करने लगे। ऐसे मालूम होता है कि एक ही चित्त की ये दो वृत्तियां, ये माइक प्रति आकर्षण और भगवान का जो नाम कर रहे हैं। किंतु मत समझो ऐसा गलत है, ये गलत है। माया की वृत्ति में भगवान को नाम लेने की वृत्ति कहां से आएगी? आएगी सब समय माया में ले जाएगी। और भगवान का नाम करूंगा इससे हमारा कल्याण होगा, ये शास्त्रों के विचारों सुन करके, गुरु जी के विचारों को सुन करके, वैष्णवों के विचारों को सुन करके, शास्त्रों में देख करके ये एक वृत्ति आई है, कृष्ण सेवा की वासना। ये वासना माइक नहीं है, किंतु मालूम पड़ता है कि एक ही मन से हम ऐसा सोचते हैं वैसा, किंतु सर्वथा पृथक है। ये वृत्तियां ही दो है, एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति और एक स्वरूप शक्ति की वृत्ति को जितना हम अनुसरण करेंगे उतना परमार्थ की तरफ में अग्रसर होंगे, और माइक वृत्ति का अवलंबन करेंगे तो काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य इत्यादि होकर के मरेंगे। इस तरह से दोनों का प्रभेद समझ करके भगवान की भक्ति में बढ़ने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए। उसमें आया है अन्नाभिलाषा शून्यम श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में, तन मन वचन आदि की चेष्टाएं, ये क्या है? प्रवृत्ति परक और एक निवृत्ति परक है। निवृत्ति परक क्या? अपराध आदि से रहित होना, ये दोनों आवश्यक है। दोनों मिलकर के तब फिर भक्ति बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एक वृत्ति को तो ये बढ़ रही है और दूसरी कुछ उसके लिए किया नहीं तो नहीं बढ़ेगी। इसलिए दोनों पर आवश्यक बल दिया गया है। तो यहां पर गोपियां किस भाव में है ये तो प्रेम की अवस्था बतलाई, जिस प्रेम को कहते हैं प्रेम कौन, प्रेम के नष्ट हो जाने का कारण उपस्थित होने पर भी जहां पर प्रेम नष्ट नहीं होता वो अप्राकृत प्रेम है। अब यह प्रेम और परिपक्व होकर के जब उठता है और उसमें हृदय सरस होने के कारण द्रवित जब होने लगता है तो उस प्रेम को कहते हैं, परिपक्व प्रेम का नाम है स्नेह। वो स्नेह भी दो प्रकार का, धृत स्नेह मधु स्नेह। मधु स्नेह भी तीन प्रकार का। तब इसके बाद में तफील स्नेह मान, तब प्रणय, तब राग अनुराग, तब महाभाव। इस महाभाव में अवस्थित ये गोपियां हैं, उनके इस प्रेम को बतलाया जा रहा है। उस समय उसका लक्षण यह है, प्रौढ़ प्रेम का भी बतलाया ना, विच्छेद सहा नहीं जाएगा, धैर्य भी इससे वो च्युत हो जाएगा। इसके लिए वो दिखला रहे हैं, गोपियां भाव नेत्रों से देख रही हैं क्या, दिव्यो विमान गतय स्मरणन स्वारा भ्रष्ट पशून कबरा मुहूर् विनिप्य। पतियों के साथ में विमान पर चढ़ी हुई आकाश में चरण करने वाली ये देवियां पतियों के साथ में हैं, और कृष्ण के मधुर बंसी मोहन बंसी नाद को श्रवण किया और कृष्ण के सुंदर रूप को निरीक्षण किया और देखते ही विवश हो गई। उनके फूल जो केशों में लगे हुए थे वो चित होकर के एकदम धीरे धीरे गिरने लग गए, उनकी नीली खुल गई, नीचे गिरने लग गए। उनको तन मन का सुध ही नहीं रहा और वो गिर गई अपने पतियों की गोद। ये कौन देख रहा है? गोपियां भाव नेत्र से देख रही हैं। वहां इतना हुआ कि नहीं, ये तो घर में बैठी हुई हैं, घर के अंदर, और जहां पर कृष्ण गोचारण कर रहे हैं वहां की ये बात हो रही है, या राष्ट्रस्थली की, या कृष्ण को देख करके वेणुवादन सुन करके देवियां आकाश से इनकी ये अवस्था हो रही है, भाव नेत्र से देख रही। तात्पर्य क्या? अप्राणी में भी, प्राणी में भी, कीट पतंगों में और पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं में भी अपने प्रेम को आरोप कर और ये भाव नेत्र से उनमें भी इस चीज को देखती हैं और अपने को अत्यंत तुच्छहीन दीन ही मानती हैं और उस योनि में जन्म लेने की स्पृहा जागृत हो जाती है। किनको? इन गोपियों को। यदि देवियों से और गोपियों की तुलना की जाए, गोपियां कोटि जन्म में भी, कोटि करोड़ों जन्म में भी ऐसा साधन भजन करके इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकती है। किंतु देख रहे आरोपित हो रहा है यहाँ, ये गोपियों की महिमा है जो ऐसा कर रही है। अरे उसको तो छोड़ दो, कृष्ण चले जा रहे हैं जिस पृथ्वी के जिस भाग पर, जिस बालू या रेती या मिट्टी पर कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, कहते हैं कि आहो इन धूलियों का कितना सौभाग्य, कृष्ण पर चरण रख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में, आ पृथ्वी का कैसा सौभाग्य। यदि दुर्भागा यदि जगत में है तो हम मर करके वही पृथ्वी के अंदर में यही स्थान होती जिसके ऊपर में कृष्ण अपना चरण। ये पृथ्वी के उस धूलि कणा का महत्व है ना गोपियों का, गोपियों के प्रेम का महत्व है, गोपियों के प्रेम की ये महिमा है। यहां पर गोपियां अपने घरों में बैठी हैं, भाव नेत्र से देखे गोचारण करते हुए कृष्ण बाहर में गए, एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं के साथ में, बलदेव के साथ में, कोटि कोटि गायों के साथ में वो जा रहे हैं। पुष्प खिले हुए हैं, वन लता तरु इत्यादि विकसित हो रहे हैं, मानो कृष्ण को देख करके आनंद से भर गए हों, रोमांचित और होकर के हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, फलों से भरपूर हो गए हैं। और उसका ये वर्णन कर रही हैं इसमें युगल गीत में, सरसी सारस हंस विहंगा चारु ग्रित हित चेतसी एत्य हरि मुपासत जे चत चित्ता हंस मिलित दृतो धृत मौना। सरस सारस हंस विहंगा, गोपियां घर में बैठी हुई, ये गोपी गीत नहीं है, बेणु गीत नहीं है, ये जुगल गीत है। उससे बेणु गीत से बेणु गीत पूर्व राग का और ये है प्रौढ़ राग का। कृष्ण मिल चुके हैं, प्रेम और भी परिपक्व हो उठा है, उस समय में ये देख रही हैं। परीक्षित महाराज जी अपनी मैया से इसी का वर्णन कर रहे हैं और इधर में सनातन गोस्वामी और उधर में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित को।
ये भीड़ भाव के लक्षण में तो दिखाया, पहले विरह में जो था क्षण कल्प एक क्षण कल्प के समान था, अब इसमें दिखा रहे हैं कल्प क्षण कल्प क्षण ये कल्प काल भी एक क्षण में जीता है।
हम लोग थोड़ा अनुभव करते हैं जबकि बीमार पड़ जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है और दर्द के मारे कराहते हैं, प्राण गया रात ही नहीं बीती, घंटी देखते हैं कि घड़ी वही की वही स्थिर है, चलती नहीं, सारी रात इतना बड़ा भारी, यदि दम्भे का रोगी हो तब देखो सांस नहीं आ जा रहा, मर रहा है, उस समय में खन कल्पत्व हो जाता है, गोपियां का उनसे कोटि गुण हो जाता है। गोपियां कह रही हैं बड़े ही आश्चर्य की बात, सरोवर के जितने भी सारस, सारस माने क्या, सौ रस रस सहित, सारस कौन सारस, ब्रज रस सहित, ये सारस है। हंस नीर और क्षीर को अलग करने वाले, प्रेम और दूसरे चीजों को अलग करने वाले बड़े प्रेमी जो हंस हैं और दूसरे जो विहंगम हैं पक्षी, कृष्ण के मनोहर मोहन बेणु गीत को सुन करके हृत चित्त उनका चित्त हरण किया जाता है, हो जाता है। अर्थात चित्त माने शुद्ध बुद्ध, वो खो देते हैं और निकट में आकर के कृष्ण के समीप आकर के संयत चित्त से, संयत माने चित्त को समाहित कर सब विषयों से, आंखों को बंद कर चुपचाप हरि की उपासना करते हैं। जिन्होंने चित्त चुराया है जिस हरि ने, उसी हरि की उपासना करते हैं। उप आसन उपासना, नीचे निकट बैठ करके कैसी उपासना, ये तो शरीर से ऊपर आ गए नीचे, और मन से कैसे संजित हो, संयत होकर के सब प्रकार से उन्हीं की चिंता करना। ऐसे यदि हम लोग भजन करें तब तो भजन है, और ऐसा नहीं कर सकते हैं संयत होकर के तब तो भजन नहीं, इसलिए हमारी ऐसी दुर्दशा है। यदि थोड़ा तबीयत खराब हो गई तो ये इन कथाओं को नहीं सुनकर घर में पड़े रहेंगे, चल रहे हैं फिर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं, किंतु कथा में बैठ करके ये सुनने में रुचि नहीं आएगी, और इधर उधर जाकर के व्यक्त की बकवास में सुनने में जमे चित्त लग जाएगा। आज जिनको इधर में रुचि है, चाहे मर रहे हैं किंतु जैसे तैसे उसको सुनने की चेष्टा करें, ये तो रुचि का लक्षण। साधन अभी साधन के निम्न भूमि की, जिनकी ऐसी रुचि नहीं हुई तो वो क्या भजन साधन करेंगे, ऐसी रुचि होनी चाहिए। करें ये जरा हंस जैसे, सारस जैसे, दूसरे दूसरे जो पक्षी हैं वो वैसे भी तो बनो, गोपियां नहीं बन सकती, गोपियों का भाव होना बड़ा भारी कठिन है। अरे भौरों जैसा तो बनो, कोकिल नहीं बन सकते, नहीं कुहक सकते, किंतु तुम देखो तो ये सारस हैं बन के, बहुत दूर हैं, निकट नहीं है, चल रहे हैं और कृष्ण गोचारण करते हुए जा रहे हैं। अब सीता में देखो ये क्या कह रहे हैं, कीट पतंगों की से अर्थात तो भौरों से, और दूसरे दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े हैं, ये पक्षी श्रेष्ठ, पक्षी लोग बहुत से हैं, मन देखकर के इधर सुनो, उधर घर में मत चित लगाओ, ये पक्षी श्रेष्ठ, ये कीड़े मकोड़े आकाश में नहीं उड़ सकते, इनकी चेतना जरा कम होती है, और ये पक्षी जो हैं कौन से सारस, जो रस ग्रहण करने में प्रवीण हैं, सारस क्या करते हैं, सारस बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उनकी लंबी लंबी गर्दन होती है, वो सारस जल के पक्षी हैं, किंतु जल में नहीं रहते, जल में तैरते हैं, और कमल की जो पराग है, क्या कहते हैं उसे, परागित तो कहते हैं, मृणाल, छोटे छोटे बड़े कोमल सुगंधित और बहुत सार वस्तु को वो ग्रहण करते हैं, कमल के भी सार को ग्रहण करते हैं। कमल तो अपने आप स्निग्ध सुंदर कोमल सुशीतल सब उसमें गुण है, निदा रही है, नींद की दवा दें दें, जिसको नींद की निदा रही है उसकी अभी दवा हम दे देते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच कर देंगे तब सब जाएंगे, अभी नाम नहीं बतला रहा हूं जो कौन सो रहा है कि कौन सो रही है, नाम लेकर के खड़ा कर देंगे तब समझ जाएंगे, इसलिए सावधानी रहिए, खूब साथ से बैठिए। तो ये पक्षी श्रेष्ठ हैं, विशेषतः ये कृष्ण के समीप नहीं आते, जैसे सुखसारी हैं ये कृष्ण के सब समीप आ सकते, किंतु जल में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं वे उड़ भी सकते हैं जैसे सारस हंस, और कुछ जो हैं वो जल ही नहीं केवल रहते हैं, पनडुब्बी है ना, उसमें भी पंख होते हैं, थोड़ी सी उड़ सकती है, आकर के काली सी जब ढुक गई थी घुस गया और सरोवर के दूसरे छोर पर वो निकल जाएगी। रात में उसी को पुररी कहते हैं ना क्या, पुररी दोष। तो ये इन पक्षियों के डैने भी होते हैं, पक्षी जल में नहीं रहते किंतु जल में उतरते हैं दूर से आकर के, हंस भी सारस भी। तो ये यहां ये जलचर प्राणी हैं, इनका भाव देख करके गोपियां वर्णन कर रही हैं। देखो तो ये पक्षी भी कितने सौभाग्यवान हैं, इनको कोई मना करने वाला नहीं है। सारस होगा तो सारसी भी होगी, हंस हो गए तो हंसनी भी होगी, बत्तख होंगे तो बत्तखी भी होंगी, पंडुक तो वो पंडुकी भी होगी। स्त्री पुरुष दोनों कृष्ण की बंसी की तान सुनकर मोहिनी और जहां से वहीं से कृष्ण के समीप में आ जाती। यहां पर गोपियां पूर्ववत पूर्व की भाग दिवा विरह दुख की शांति के लिए, उनको दूर करने के लिए परस्पर भवन लीला का गान कर रही हैं। परस्पर दिवा विरह दुख क्यों, दिन सबके लिए सुखकर है किंतु गोपियों के लिए दुखकर है, क्योंकि मिलन नहीं इसमें होता है। सवेरे कृष्ण उठते ही गायों को बछड़ों को संभालने के लिए गोष्ट में चले जाते हैं। इसके बाद में सखाओं के साथ में मल्ल क्रीड़ा में लग जाते हैं और उसके बाद में यशोदा जी कृष्ण बलदेव को बुला करके घर में स्नान करा करके भोजन के लिए बैठाती हैं। उसमें हजारों सब सखा लोग। इसके बाद में वन प्रदेश में कृष्ण जाते हैं, उस समय जितने ब्रज के लोग हैं वो सब लोग कृष्ण के साथ में जाने लगे। यदि नंद यशोदा और मातृ और पितृ स्थानीय लोग यदि लौट भी आए कुछ दूर पहुंचा करके तो ये गोपियां बाकी रह जाती हैं, वो जल्दी नहीं छोड़ना चाहती। किंतु उस समय भी कृष्ण के लाखों लाखों सखा बलदेव प्रभु जी साथ में रहते हैं। इसके बाद में वन में प्रवेश कर जाते हैं, गोपियां लौट आती हैं और विरह में वियोग में दुख अनुभव करती हूं और एक दूसरों से यह वार्तालाप करती हूं। शाम को यदि लौटे भी कृष्ण तो लाखों सखा ग्राम वाले आ गए और उस समय में गोपियां उनको अपने गोपियां मैंने मातृस्थानीय गोपियां अपनी गोदी में लेकर के कृष्ण को दुलार लाड़ प्यार करने लग जाती है। उस समय गोपियां यदि देख भी चले तो बहुत दूर से। इसके बाद में कृष्ण ने स्नान इत्यादि किया, फिर गऊओं को संभालने के लिए चले गए और फिर वहां से आकर के प्रसाद पाया नंद बाबा और सब उपानंद सबके साथ में सखाओं के साथ में विश्राम करने चले गए। अब तक उनको करीब करीब 16-17 घंटे गोपियों से उनका कोई भी मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए दिवा दुख। यदि दिवा दुख है तो तब कुछ बाकी रह गया ना, क्या बाकी रह गया तो उसका यहां पर उल्लेख नहीं किया, उसको अवहित्था पूर्वक उसे छिपा दिया। दिवा विरह दुख शांति के लिए भवन लीला का गान करने लगी, आविष्ट होकर के ऐसे आविष्ट हो गई कि भाव नेत्रों से सब कुछ देख रही हैं, ये क्या क्या कृष्ण वन में किस वन में कैसे जा रहे हैं, कैसे पशु पक्षी इत्यादि का सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी चीजों को यथावत वो ऐने में अपने रूप के सामने सबको देख रही हैं। किसी भी व्यक्ति को साधारण भी कृष्ण के प्रति हरि कथा में रुचि हो तो जो सुने हुए विषय को वो अपने आप चिंतन आएगा, चाहे वो सुने जा रहा हो या बैठा हो या ये आएगा, और यदि नहीं हुआ तो ये सुनना बेकार है, उन लोगों का सुनना बेकार है जो माया से भरे हुए काम क्रोध लोभ मह और संसारिक माया ममती अपने हृदय में भर रखा है और सुना और यहाँ से उठते ही जो सुना था वो भी भूल करके बस देह में आसक्त होकर के सारी कुछ को भूल गए। आराम से स्वप्न देखा, देखा जी मेरी बूढ़ी मैया आ रही है, मेरी बहन आ रही है और मेरा भैया कह रहा है कि भैया तुम हमको छोड़ करके आ गया, हम बड़े दुख से हैं। वही संसार की सारी जितनी भी बातें हैं वो सब बूढ़े होने तक 90 बरस की उम्र 100 बरस की उम्र में मरने जा रहे हैं, 100 बरस हो गया दीक्षा लिए हुए और वही चीजें आएंगी क्योंकि इसके लिए शुभ रूप में जत्न नहीं किया, इसलिए सपने में वही चीजें आएंगी। गुरु जी से भेंट हुई, कुछ परमार्थिक शिक्षा युक्त बातें या राधा कृष्ण की जो लीलाएं सुनते हैं उनके लिए कभी भी आती नहीं, उनका जीवन बेकार का, हरि कथाओं का कोई भी असर नहीं। आज जिन लोगों को ऐसा होता है जिसको श्रवण किया उसका मनन किया और दिन रात उसी की चिंता कर, वो जरूर आएगा, अंततः मृत्यु के समय में जरूर आएगा अनायास रूप में, ये हरि कथा का फल है। उसको दुख भी स्पर्श नहीं कर सकेंगे, चिंता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज जिन लोगों ने ऐसा नहीं सुना वो प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, कहेंगे पहले प्रॉब्लम को ठीक कर लें तब हरि कथा को मन से सुनेंगे, एकांत में जाएंगे और वहां पर एकांत में कोठरी बनाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, दिन रात हरे कृष्ण करेंगे, बस ये बस चंडू खाना का ये गप हो जाएगा। चंडू खाना जानते हैं, शराबी होते हैं ना, शराबी मटके में शराब भर करके ताड़ी, ताड़ी जानते हैं ना, शराब नहीं ताड़ी ढाल रहे हैं और गप करें, मैं बादशाह इंद्र कुमार दिल्ली का बादशाह मैं हूं और वैसा ही गप करते हैं, ऐसे ही स्थिति हो। इसलिए इन सब चीजों को सावधानी से समझ बुझ कर करके भजन करो। अब गोपियां उस भाव में कौन प्रौढ़ अवस्था में प्रौढ़ प्रेम में उस पूर्वराज से भी अधिक प्रौढ़ प्रेम में ये गोपियां कह रही हैं, सारस हंस सरसी सारस हंस दिहंगा चारुगृत हित चेतस करेंगे। सखियो आ देखो तो इन पक्षियों का कितना सौभाग्य है, इनको कोई मना करने वाला है, कोई बिघ्न नहीं है। कृष्ण ने स्वच्छंद रूप से बंसी बजाई और उसके शब्दों को सुन करके वेणुनाद को श्रवण करके ये वहां से झट जहां कृष्ण वेणु बजा रहे हैं वहां पर उड़ करके चले आए, अथवा ये समझो कि जहां पर वो सरोवर है उसी के निकट में ही कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और वहीं पर सारे जो इधर उधर तैर रहे थे पानी में और कमल के पराग इत्यादि को मकरंद को ग्रहण कर रहे थे सब कुछ भूल गए, भूल करके भोग सामग्रियों को भूल करके सरोवर से दूर अवस्थित रहते हैं वो कृष्ण के निकट। पानी में बहुत ही सुंदर मधुर और सुस्वादु कमल की नाभि में वो रहता है पराग, उसको ग्रहण करते हैं। संसार का सुख के साथ में उसकी तुलना लगाओ, बहुत ही मनोरंजक बहुत ही मनोहारी वो चीजें हैं क्या ये संसार के भोग। जहां कृष्ण के भजन की कोई बात सुन करके गुरु वैष्णव से और उन सबको त्याग करके उनके समीप आकर के जो भजन करते हैं वो सारस हैं, वो हंस हैं, नहीं तो कौवे हैं, यदि ऐसा नहीं तो कौओं की गिनती, यहां पर कौओं की कहीं भी नहीं आए जो कृष्ण की बंसी सुन करके आए, वो तो डर करके उचक करके देख करके उड़ करके भागेंगे। ओ संख्या में अतीत है, संख्यातीत सारस हंस और अन्य प्रकार के जितने भी जलचर हैं विहंग हैं कृष्ण के चारु वेणु गीत को, चारु माने मोहन, चारु माने अत्यंत मधुर विशेष करके अवरोह और आरोह स्वर से युक्त कृष्ण की मधुर बंसी को सुनकर शायद ये सुनते हैं कि हमें बुला रहे हैं और सभी सब कुछ छोड़कर चित्त चित्त कृष्ण ने बंसी ध्वनि से उनका चित्त चुराया, लेकर के जब चलने लगी बंसी की ध्वनि उसके चित्त को निकाल लिया, उसके हृदय से चलने लगी, तो ये भी पीछे पीछे दौड़ गए अपने चित्त को पाने के लिए, अपने हृदय को पाने के लिए वो दौड़ थे, व्याकुल हो गए। प्रथमतः मोह प्रयुक्त इतस्तत भ्रमण करिया, इधर उधर घूमते हैं और इसके बाद में जिधर में बंसी की आवाज रही ठीक उसी के पीछे 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 वहां पर आते चले आते हैं और आकर के समीप एत्य एत्य माने आकर चित चेत एत्य आकर हरि मुपास, जिन्होंने उसके चित्त को हरण कर लिया था उनकी उपासना वो करने लग गए। कैसे उपासना का लक्षण कर रहे हम लोग को भी साधारण उपासना में वो चीजें होनी चाहिए, हम लोग भी भजन की आवाज कहीं से सुन करके वैष्णवों से गुरु वैष्णवों से सुना जे कृष्ण का भजन करना ही जीवन का अंतिम सार है सुन करके एत्य कहां कहां एत्य आकर वैष्णवों का संग उसमें आए। अब हम लोगों को कैसा होना चाहिए, उन पक्षियों की भांति होना चाहिए, तीन उनके गुण बतला रहे हैं। यत चित्ता